सुबह के लगभग 7 बज रहे थे। दिशांग पिछले 2 दिनों से बंधा हुआ था। ऊपर से सच उगलवाने के लिए अर्पित उसे टॉर्चर भी कर रहा था। थकान की वजह से उसका शरीर दर्द से टूट रहा था। दिशांग भले ही रात को बेहोश होने का ड्रामा कर रहा था, लेकिन कुछ ही देर में वो सच में बेहोश हो गया था। सुबह सुबह अचानक दिशांग के चेहरे पर बाल्टी भर ठंडा पानी आया, जो अर्पित ने डाला था। पानी गिरने से उसकी बेहोशी टूट गई, लेकिन जख्मों पर ठंडा पानी गिरने की वजह से उसे बेतहाशा जलन हो रही थी। आ! दिशांग जोर से चिल्लाया। उसने अपनी सूजी हुई आंखों से सामने की तरफ देखा तो उसे अर्पित का धुंधला सा अक्स दिखाई दिया। अर्पित हाथ बांधकर उसके आगे खड़ा था। उसने कंधे उचकाकर कहा, वॉट, अब तुम क्या चाहते हो? मैं तुम्हें गुड मॉर्निंग विश करते हुए कॉफी के साथ तुम्हें जगाऊं? वैसे भी मैंने तुम्हें बहुत टाइम दे दिया, अब और टाइम नहीं है मेरे पास वेस्ट करने को। जल्दी से अपना मुंह खोलो और बताओ इशिका सिंघानिया कहाँ है। मैंने कह दिया, वो इस दुनिया में नहीं रही है। मुझसे तो क्या, पूरे गोवा में जाकर किसी से भी पूछोगे तो यही जवाब मिलेगा, दिशांग ने धीमी लड़खड़ाती आवाज में कहा। दिशांग की बात सुनकर अर्पित ने गुस्से में आंखें बंद करते हुए अपनी गर्दन पर हाथ फिराया। फिर अचानक उसने आंखें खोली और जोर से चिल्लाकर कहा, देखो अब तुम मुझे इरिटेट कर रहे हो। पिछले 2 दिनों से मैं तुम्हारे मुंह से यही बात सुनकर थक गया हूं। एक बार तुमने और यही कहा तो मैं तुम्हें आखिरी मौका भी नहीं दूंगा। ठीक है, मत करो मेरी बात पर यकीन। एक बात ध्यान से सोचो, वो अभिमन्यु राजवंश की पत्नी थी। अगर इशिका सिंघानिया जिंदा होती तो तुमसे पहले वो उसे ढूंढ चुका होता, दिशांग ने थके हुए स्वर में जवाब दिया। अच्छा, तो तुम्हारे हिसाब से वो इस दुनिया में नहीं रही तो तुम यहां क्या कर रहे हो? तुम तो उसका मैनेजर हो ना, उसका काम मैनेज करने के लिए तुम्हें भी उसके साथ ही जाना चाहिए था, तो क्यों ना अब तुम्हें उसके पास भेज दिया जाए? अर्पित ने सिर हिलाकर सनक भरे लहजे में कहा। अर्पित का गुस्सा अब उसके बस के बाहर हो गया था। ऊपर से दिशांग उसे कुछ बता भी नहीं रहा था। अर्पित ने अपनी गन उठाई और उसे दिशांग की तरफ तान दिया। वहीं दिशांग की दिल की धड़कनें इस वक्त डर के मारे तेजी से चल रही थीं। उसने इशिका को बचाने का फैसला तो ले लिया था, लेकिन अर्पित के इरादे देखकर लग रहा था कि वो किसी भी पल उसकी जान ले लेगा। इससे पहले कि अर्पित ट्रिगर दबाता, अचानक से फैक्ट्री का गार्डन दरवाजा खुला और बाहर से पुलिस के सायरन की आवाज़ सुनाई दी। अर्पित अगर दिशांग को मारकर वहां से निकलता तो उसके पकड़े जाने के चांसेस ज्यादा थे, जो वो किसी भी हाल में रिस्क नहीं ले सकता था। अर्पित ने दिशांग की तरफ देखकर गुस्से में कहा, आज तो बच गए हो लेकिन आगे नहीं बच पाओगे। किस्मत अच्छी थी जो पुलिस यहां पहुंच गई है। मेरी नज़र तुम्हारे ऊपर ही है और देखना, तुम ही मुझे इशिका सिंघानिया तक पहुंचाओगे। इतना कहने के बाद अर्पित जल्दी से वहां से छुपते छुपाते दूसरे दरवाजे से बाहर निकल गया था। वो उसी रास्ते से अंदर आया था जब लगभग 2 दिन पहले रात के वक्त दिशांग किसी काम के चलते अकेले फैक्ट्री आया था। वो किसी से कॉल पर बात कर रहा था कि तभी अर्पित ने पीछे से एक भारी चीज से उसके सिर पर वार किया था। दिशांग इतना कमजोर नहीं था कि एक वार से ही वो घायल हो जाए, लेकिन अर्पित ने अपने हाथ में स्प्रे ले रखा था, उसी की मदद से उसने दिशांग को बेहोश किया था। अर्पित के जाते ही दिशांग ने राहत की सांस ली। उसकी आंखों से आंसुओं का कतरा बह गया था। दिशांग ने बंद आंखों से कहा, मैं जानता था कि आप मुझे ढूंढ ही लेंगी। दिशांग भी समझ गया था, उसके लिए ये मदद जरूर इशिका ने ही भेजी होगी। वो मन ही मन ऊपर वाले और इशिका का शुक्रिया अदा कर रहा था, जिसने अंतिम क्षण पर जाकर उसकी जान बचाई थी। लगभग 3 मिनट बाद अंदर कुछ आदमी पहुंचे जो अभिमन्यु के थे। उन्होंने पुलिस का सायरन जरूर बजाया था, लेकिन वहां कोई पुलिस नहीं आई थी। दिशांग को इस तरह बंधा हुआ देखकर उनके लीडर ने उसे खोलने का इशारा किया। फिर उसने तुरंत अभिमन्यु को कॉल करके कहा, सर हमने उन्हें ढूंढ लिया है, वो घायल है, उन्हें अस्पताल लेकर जाना पड़ेगा। शुक्र है किसी ने उनकी जान नहीं ली। ठीक है, उसके ठीक होने पर मेरी उससे बात करवाना। जब तक उसका पूरा ट्रीटमेंट नहीं हो जाता, उसकी सिक्योरिटी को पूरी तरह टाइट रखना है। याद रखना, अगर उसे कुछ हुआ तो जिंदा तुम भी नहीं बचोगे, अभिमन्यु ने सख्त आवाज में कहा। अपनी बात खत्म करके अभिमन्यु कॉल कट करने को हुआ कि तभी दिशांग जल्दी से उसके गार्ड के पास आया और उसका मोबाइल छीन लिया। वो कॉल पर बोला, प्लीज प्लीज कॉल मत कट करना। क्या हुआ दिशांग, तुम्हें कुछ कहना है? कौन थे वो लोग जो तुम्हारे पीछे पड़े हैं? अभिमन्यु ने जल्दी से पूछा। वो मेरे पीछे नहीं, वो मिस सिंघानिया के पीछे पड़े हैं। वो आदमी जो भी था वो मर्चेंट फैमिली का मेंबर था। वो लोग इस बात के बारे में जान चुके हैं कि वो जिंदा है, तभी उसे ढूंढ रहे हैं। प्लीज उसे बचा लीजिए, दिशांग लड़खड़ाती आवाज में अपनी बात पूरी कर रहा था। तुम इशिका की फिक्र मत करो, उसकी सिक्योरिटी का मैं देख लूंगा। मेरे आदमी तुम्हारी सिक्योरिटी का पूरा ख्याल रखेंगे, उसके बाद तुम दिल्ली आ जाना। अभिमन्यु ने उसे सब समझाया और फिर कॉल कट कर दिया था। दिशांग की सही सलामत मिलने पर अभिमन्यु ने राहत की सांस ली। उसने तुरंत इशिका को कॉल करने का सोचा, पर उसने खुद को रोक लिया था, क्योंकि इशिका इस वक्त युविका के साथ भी हो सकती थी। वहीं इशिका नहाकर बाथरूम से बाहर निकली थी। उसे लगा युविका रूही को स्कूल छोड़ने के लिए गई होगी। यही सोचकर इशिका ने ईशानी का मास्क रूम में रख दिया था। वैसे भी हाउस हेल्पर्स बिना परमिशन के अंदर नहीं आते थे। इशिका जैसे ही बाथरूम से बाहर निकली
उसके सामने युविका खड़ी थी, जिसने ईशानी के चेहरे वाला मास्क लगा रखा था। युविका के लिए शिखा पूरी तरह एक अनजान शख्स थी। अचानक उसे अपने कमरे में देखकर युविका जोर से चिल्लाई। इससे पहले कि युविका और चिल्लाकर मदद बुलाती और इशिका पकड़ी जाती, इशिका तेजी दिखाते हुए दौड़कर उसके पास आई। उसने युविका का मुंह कसकर बंद कर लिया था। युविका उससे छूटने के लिए हाथ पैर मार रही थी, लेकिन इशिका मार्शल आर्ट में अच्छी थी। उसने युविका को काफी अच्छे से कंट्रोल कर रखा था। इशिका ने युविका के कान के पास आकर धीमी आवाज में कहा, मैं तुम्हारा मुंह छोड़ने वाली हूँ, चिल्लाना मत वरना अच्छा नहीं होगा। इतना कहकर इशिका ने युविका का मुंह छोड़ दिया था। युविका घबराकर कुछ कदम पीछे हट गई थी। उसे रूही के लिए डर लग रहा था, जो गाड़ी के अंदर अकेली थी। युविका ने घबराते हुए सिर हिलाया और इशिका के सामने प्लीडिंग वॉइस में कहा, देखो तुम जो भी हो, तुम्हें जो भी सामान चाहिए तुम लेकर जा सकती हो, लेकिन हमें नुकसान मत पहुंचाना। बाहर एक छोटी बच्ची है, अगर तुमने उसे कुछ किया तो मैं सच में तुम्हारी जान ले लूंगी। ईशानी, मेरी फ्रेंड ईशानी कहाँ है? कहीं तुमने उसे मार तो नहीं दिया? बोलते हुए युविका का चेहरा डर से पीला पड़ गया था। इशिका ने गहली सांस लेकर छोड़ी और कहा, मैं किसी को कुछ नहीं करूंगी, तुमने अपने हाथ में जो चीज पकड़ी है वो मुझे दे दो। इशिका का सामान तरुण के घर छोड़ने की वजह से उसके पास वही मास्क बचा था। युविका ने उसे इशिका की तरफ देखने से पहले गौर से देखा तो उसे सब समझ आ गया था। वो एक एडवांस टेक्नोलॉजी से बनाया हुआ मास्क था, जैसा अक्सर सीक्रेट एजेंट किसी का रूप लेने के लिए इस्तेमाल करते थे। इसका मतलब तुमने ईशानी की जगह ले रखी थी। क्या किया है तुमने ईशानी को? कहीं तुमने उसे मार तो नहीं दिया? युविका ने रोते हुए पूछा। ईशानी के मरने का ख्याल ही उसे अंदर से तकलीफ दे रहा था। उसे खुद से ज्यादा रूही के लिए बुरा लग रहा था। इशिका कुछ एक्सप्लेन कर पाती उससे पहले युविका जल्दी से उसके पास आई। ईशानी को नुकसान पहुंचाने वाले शख्स को वो ऐसे ही नहीं जाने दे सकती थी। युविका ने इशिका का गला पकड़ लिया था। उसे दबाते हुए बोली, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुमने मेरी फ्रेंड को मार डाला है। बताओ ईशानी कहाँ है, वरना मैं तुम्हें पुलिस स्टेशन लेकर जाऊंगी।
इशिका ने युविका के पेट में किक मारकर उसे खुद से दूर धकेला। गला घुटने की वजह से इशिका को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। उसका चेहरा लाल हो गया था और वो खांस रही थी। इशिका ने जल्दी से पानी पिया। इशिका ने देखा मौका पाकर युविका वहां से भागने की कोशिश कर रही थी। उसने जल्दी से दौड़कर पीछे से युविका के बालों को पकड़ लिया, जिससे युविका जोर से चिल्लाई,
छोड़ो मुझे, तुमने मेरी ईशानी को गायब कर दिया और उसकी जगह ले ली, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुम्हें कानून इसकी कड़ी से कड़ी सजा देगा,
युविका दर्द से कराहते हुए बोली। इस मामले में पुलिस के इन्वॉल्व होने से इशिका की सारी सच्चाई खुल सकती थी, ऐसा वो कभी नहीं होने दे सकती थी। अगर इशिका सबके सामने आती तो ये राज भी बाहर आ जाता कि इशिका सिंघानिया यानी इशिका अभिमन्यु राजवंश जिंदा है, और इससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती थी। इशिका ने गहरी सांस ली और युविका को समझाते हुए कहा, तुम मुझे मेरी बात एक्सप्लेन करने का मौका भी दोगी?
क्या एक्सप्लेन करोगी तुम? इस वक्त तुम मेरी फ्रेंड की जगह एक अजीब सा मास्क लगाकर छुपी हुई हो, ना जाने तुम कौन हो और तुमने उसके साथ क्या किया है, और फिर भी तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे ऊपर यकीन करूं? सॉरी टू से, ऐसा नहीं होगा, युविका ने जवाब दिया।
युविका और इशिका के बीच अभी भी जद्दोजहद छिड़ी हुई थी। युविका वहां से निकलकर रूरी को बचाने के बारे में सोच रही थी, तो वहीं इशिका यही चाहती थी कि युविका उसकी बात को समझे। इशिका ने आखिरकार युविका को छोड़ दिया था। वो दरवाजे के सामने खड़ी हो गई। उसने अपने हाथ बांधे और सख्त निगाहों से युविका की तरफ देखते हुए कहा, अगर मुझे रूही को नुकसान पहुंचाना ही होता तो पिछले 10 दिनों से मैं उसके साथ हूं, मैं कुछ भी कर सकती थी, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी।
क्या?
युविका हैरानी से आंखें बड़ी करके बोली। पिछले 10 दिनों से इशिका रूही के साथ रह रही थी, ऊपर से इस बीच में वो युविका से भी मिली थी, लेकिन उसे कभी इस नकली ईशानी पर शक नहीं हुआ था। युविका कुछ पल ऐसे ही हैरानी से उसकी तरफ देखती रही, फिर उसने सिर हिलाकर पूछा, आखिर तुम कौन हो और तुमने ईशानी की जगह क्यों ले रखी है? वो तो कोई बड़ी पर्सनैलिटी भी नहीं है जिसकी जगह लेकर तुम्हें कोई फायदा होगा। तुम अगर यहाँ हो तो ईशानी कहाँ है? ये सबसे बड़ा सवाल था, आखिर ईशानी कहाँ है, जिसके बारे में इशिका और अभिमन्यु ही जानते थे। इशिका की पलकें भीगने लगी थीं और उसे वो लम्हा याद आ गया जब ईशानी ने उसे बचाने के लिए खुद की जान दे दी थी। इशिका को चुप देखकर युविका ने गुस्से में चिल्लाकर पूछा, तुम जवाब क्यों नहीं दे रही हो? आखिर कहाँ है ईशानी?
वो इस दुनिया में नहीं है,
इशिका ने धीरे से कहा।
क्या मतलब इस दुनिया में नहीं है? तुमने मेरी फ्रेंड को मार डाला ना, आखिर क्या बिगाड़ा था उसने तुम्हारा जो तुमने उस मासूम की जान ले ली?
उसका तो कोई दुश्मन तक नहीं था, अपने पति तक से वो बगावत करके उससे अलग नहीं हो पा रही थी, फिर तुमने उसे क्यों मारा? युविका ने रोते हुए कहा। उसे ईशानी की मौत का झटका सा लगा था और वो बेड पर थम से बैठ गई थी। इशिका उसकी हालत समझ सकती थी, वो उसके पास पानी का ग्लास लेकर गई, लेकिन युविका ने गुस्से में उसे फेंक दिया था। युविका ने गुस्से में सख्त निगाहों से उसकी तरफ देखते हुए कहा,
मुझे उसका हाथ का पानी भी नहीं पीना जिसने मेरी फ्रेंड की जान ली है। मैंने उसे नहीं मारा है, इनफैक्ट मैं तो खुद उससे कुछ दिनों पहले मिली थी। वो मेरी जुड़वा बहन थी और उसकी जान मुझे बचाने के चक्कर में चली गई, इशिका ने बताया, लेकिन युविका मानो उसकी बात पर यकीन ही नहीं करना चाहती थी। अच्छा, और तुम्हें ये क्यों लगता है कि मैं तुम्हारी बात पर यकीन कर लूंगी? युविका को उसके पेरेंट्स ने अडॉप्ट किया था, वो उनकी इकलौती बेटी थी और फिर अचानक से उसकी जुड़वा बहन पैदा हो गई। तुम इतनी ही सच्ची हो तो तुम पुलिस में क्यों नहीं गई? तुमने ईशानी की जगह क्यों ली थी? युविका ने गुस्से में पूछा। क्योंकि मेरी जान को खतरा था, हम दोनों एक साथ एक शिप पर थे। ईशानी ने मुझे बचाया क्योंकि वो चाहती थी कि मैं जिंदा रहूं। अब मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि मैं झूठ नहीं बोल रही हूं? ईशानी खुद चाहती थी कि मैं उसकी बेटी रूही का ध्यान रखूं और मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूं, इशिका ने अपनी बात रखते हुए कहा। वो काफी फ्रस्ट्रेटेड हो गई थी। एक तो अचानक से उसका राज खुल गया था, ऊपर से कोई उस पर यकीन नहीं कर रहा था। अगर इतनी ही सच्ची हो तो अपनी सच्चाई का सबूत दो, वो भी मेरे सामने नहीं, पुलिस के सामने। अगर तुमने फिर से मेरे ऊपर हमला किया तो मैं यही सोचूंगी कि तुमने ही ईशानी को मारा है, युविका ने जवाब दिया। उसने इशिका का हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए नीचे ले जाने लगी। जब तक युविका इशिका का साथ नहीं दे देती तब तक वो ईशानी की जगह नहीं ले सकती थी। ऊपर से इस मौके पर ऐसा कोई नहीं था जो उसकी हेल्प कर सके। नीचे जाते हुए सेफ्टी के लिए युविका ने एक चाकू उठा लिया था जो उसने इशिका की कमर पर रख दिया था। ये मत सोचना मैं कुछ कर नहीं पाऊंगी, तुम मेरे लिए मेरी दोस्त की कातिल के अलावा और कुछ नहीं हो जो बचने के लिए मनगढ़ंत कहानियां बना रही है। अगर जरा भी होशियारी करने की कोशिश की तो तुम पर हमला करने से पहले मैं एक मिनट भी नहीं सोचूंगी, युविका ने धमकी भरे अंदाज में कहा। इशिका चुपचाप शांति से युविका के साथ चल रही थी। उसने बस इतना ही पूछा, तुम मुझे कहाँ लेकर जा रही हो? पुलिस स्टेशन, युविका ने सख्ती से जवाब दिया, हालांकि उसकी आंखों में आंसू थे। इशिका, जो अब तक अपनी पहचान छुपाने के लिए इतनी मेहनत कर रही थी, वहीं उसकी एक छोटी सी लापरवाही की वजह से वो पकड़ी गई थी। इस वक्त तो अभिमन्यु भी नहीं था जो उसकी मदद कर सके।
मैं इलाज करती हूँ।